नमस्कार छात्रों,
एमए हिंदी भाग एक के अंतर्गत भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में हम डॉक्टर सुनील कुमार लौटे जी से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर ने भाषा प्रौद्योगिकी का मतलब, उसके उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी दी, लेकिन जिस तरह हम किसी तंत्रज्ञान का स्वीकार करते हैं और उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सफर जो है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल है, रास्ते में कुछ कठिनाइयां आने वाली नहीं है, आप बस उसका इस्तेमाल करते जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह जीवन का सफर इतना सरल नहीं है, उसी तरह टेक्नोलॉजी का भी जो इस्तेमाल है उसका सफर कठिनाइयों से भरा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तंत्रज्ञान आते रहते हैं और फिर उनका प्रयोग करने का भी हमारा दायित्व रहता है। भाषा प्रौद्योगिकी के बारे में, जैसे कि अभी हिंदी न केवल राष्ट्रीय रह चुकी है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है, तो उसकी कुछ संभावनाएं भी हमें नजर आती है। और ये जो संभावनाएं है, इनका अगर हम गौर अच्छी तरह से नहीं करें तो आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रौद्योगिकी का हमने स्वीकार किया उसी का उसका जो यश है या उससे हासिल होने वाली जो उपयोगिता है वो ना होने के लिए हम खुद उसके जिम्मेदार हो जाएं। तो जो संभावनाएं है वो संभावनाएं क्या है, जो कठिनाई आने वाली है वो कठिनाई क्या है, और किस तरह से हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जिससे ना केवल शहर में रहने वाले लोग या ना केवल बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके लिए ही ये सीमित रह जाए, और जो हमारे छात्र विद्यार्थी देहातों में बसे हैं वो उनको तो ये भाषा प्रौद्योगिकी छू ना जाए। तो इस संभावना के बारे में हम अभी विस्तार से लौटे सर से बात करेंगे। जिस तरह लौटे सर ने हमें उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में बताया, उससे ऐसा लगता है कि सर भी बहुत आश्वासक है इसके बारे में, और वो चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी का उसका जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना वो न केवल भाषा के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों जो जिनको हिंदी में रुचि है, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए वो सरल होगी। तो भाषा प्रौद्योगिकी की संभावनाएं के बारे में सर जरा आप हमें और हमारे छात्रों को अवगत करें, ऐसी मैं विनती करता हूं।
धन्यवाद डॉक्टर राजदीरकर जी। संभावना शब्द जब आप प्रयोगित कर रहे थे तो मेरे मन में एक कभी पढ़ी हुई कविता याद आ गई। उसमें वो कवि बताता है कि मुझे ये मत बताओ कि आपकी संभावना का आकाश कितना खुला है, मुझे ये समझाओ जरा कि हकीकत का वास्ता क्या है। तो ये इस कविता में वो कवि जो प्रश्न करता है और जो हकीकत समझाता है, वही असल में हमारी हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी का वर्तमान है और भविष्य भी है, ऐसी मेरी धारणा है। भाषा प्रौद्योगिकी की पूरी दारोमदार जो होती है दोस्तों, वो किस बात पर निर्भर होती है, ऐसा यदि आप प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये सांख्यिकी आधार पर समझाना चाहूंगा कि जिस भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता ज्यादा, उसका भविष्य पुख्ता। हमारी आबादी कितनी है हमारे देश की, 2015 में हमारी आबादी 1.25 अरब मानी गई है, और विदेश में रह रहे जो भारतीय है और जो विदेशी लोग हिंदी जानते हैं उसको जोड़ देंगे तो आपको और एक 5 करोड़ लोगों की आबादी उसमें जोड़नी होगी। मैं नहीं मानता कि अंग्रेजी और चीनी भाषा मैंडरिन के बाद यदि दुनिया की कोई सशक्त सांख्यिकी के तौर पर भाषा है तो भारतीय है, यानी विश्व की तीसरी भाषाई आबादी हिंदी की है। एक तरह से हम ये देखते हैं कि विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी भाषा से घिरा हुआ है। यूरी गागारिन जब पहली बार अवकाश से गया था तो उसे पूछा गया था कि धरती कैसे दिखाई देती है, तो उसने कहा था कि चंद्रमा जैसी दिखाई देती है। चंद्रमा पर जैसे धब्बे हैं, वैसे पृथ्वी पर भी धब्बे दिखाई देते हैं। वैसे यदि भाषा का नक्शा खींचा जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि यूरी गागारिन को हिंदी भाषी नक्शा भी उतने ही प्रभाव से जितने कि चांद पर होने वाले धब्बे। ये संभावना का हमारा जो आकाश है, हमारी प्रयोगकर्ताओं की जो घनता है दुनिया में, इस घनता के आधार पर संभावनाओं का आकाश पुख्ता है और विशाल भी है। सिर्फ संख्या से दोस्तों काम नहीं चलता। हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है, प्रतिबद्धता, कि जब तक भाषाई प्रतिबद्धता काम नहीं करती तब तक आप देखा करेंगे कि कोई व्यवहार सशक्त और प्रभावशाली नहीं होता। भाषा की ताकत कितनी है और कितना अहंकार संभावनाओं का क्षितिज खोलता है, तो मुझे जापान की एक घटना याद है कि नारिता नाम का वहां का हवाई अड्डा है टोक्यो का, वहां मैं उतरा था और मैंने देखा कि सामने नियॉन साइन पर सारी भाषाओं में स्वागत का फलक आ रहा है। वो मुझे पता चला कि जब मैंने अंग्रेजी पट्टी पढ़ी, तो मैंने सोचा कि चलो हिंदी आती है तो जरा पढ़ लेते, क्योंकि अंग्रेजी को मैं सरसरी निगाह से पढ़ नहीं पाया था। तो मैं वहां रुका और जब हिंदी की पट्टी आई तो मैंने पढ़ा क्या लिखा हुआ था स्वागत का फलक सारी जापानी जनता की ओर से। उसमें उन्होंने लिखा था कि हम आपका जापान में स्वागत करते हैं, बशर्ते आप जापानी जानते हैं। यदि आप जापानी जानते हैं तभी हम आपका स्वागत करते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये भाषाई अभिमान, भाषाई गर्व नाम की जो बात होती है, इस तरह से देश के व्यक्ति की जहन में जब तक उतर नहीं आती, भाषा आपकी राजभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, विश्वभाषा हो, ये बड़े बड़े शब्द किसी काम के नहीं होते। मैं तो ये कहता हूं कि हिंदी की भाषा को यदि किसी ने बचाया है तो वह मंडी में बैठा हुआ आम आदमी है जो सब्जियां बेचता है, कोई टूटी फूटी चीजें बेचता है। आम आदमी ने हिंदी को बचा कर रखा है। और यदि वह आम आदमी हिंदी नहीं बोलता, जैसे इसके पहले व्याख्यान में मैंने कहा कि टैक्सी और रिक्शा वाले ने हिंदी को बचा कर रखा है, शिक्षित समुदाय ने नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी भाषा की संभावना का आकाश विशाल तब होता है जब हमारे पास एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता हो। वो प्रतिबद्धता बहुत सारे देशों में दुनिया के दिखाई देती है, हम में वो कमी है। हम में राष्ट्रीय भावना, आप मुझे माफ करेंगे, कि बहुत कमजोर है हमारे पास, कि हम बातें बड़ी करते हैं, कृति में हम उतने सक्रिय नहीं होते जितना कि होना चाहिए। एक राजभाषा की बात हम ले लेंगे, कि हमारे कितने ही लोक प्रतिनिधि, मंत्री, ओहदेदार लोग कि जिनको हिंदी नहीं आती और वे देश का इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। परसों ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व हिंदी सम्मेलन में एक प्रश्न किया था कि हिंदी का महत्व क्या है, मुझसे कोई नहीं जानता, ऐसा उनको समझाना था। और उन्होंने हमें प्रश्न किया था कि ऐसी कल्पना करो कि मुझे हिंदी नहीं आती तो क्या मैं देश का पंत प्रधान बनता। तो ये जो एक वाक्य है मेरी दृष्टि से वो बहुत महत्व का है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा और इस देश का वास्ता है और इसको मुझे प्रतिबद्ध होना है। राजभाषा संविधानिक बंधन जरूर है लेकिन कार्य में प्रतिबद्ध मैं हर काम हिंदी में करूंगा। एटीएम मशीन है हमारी, अब जानते हैं कि हमारी एटीएम मशीन में हिंदी प्रोग्राम है लेकिन पर्चियां हिंदी में नहीं आती क्योंकि उस मशीन में हिंदी भाषा ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना कि इसको हमें पकड़ कर रखना है। मुझे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक बता रहे थे कि आप अकेले कोष्टक में शब्द शायद उन्होंने मन में रखा होगा पागल है कि शिकायत करते आते हैं कि हिंदी मशीन में नहीं है। भले मैं पागल हूं दोस्तों लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूं। तो वैसे हमारी राजभाषा सही माने में राजभाषा कब बनेगी कि हमारा हर राष्ट्रीय कागज, हर शासकीय कागज, ये बंधन है हमारा कि कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज, कोई भी अनुदानित संस्था, कोई भी स्थानिक स्वराज्य संस्था कोई पत्र लिखे तो संविधानिक बंधन है कि वह द्विभाषिक पत्र व्यवहार करे। द्विभाषिक माने अपनी प्रांतीय भाषा में और एक संपर्क भाषा में वह व्यवहार करे। हम उसका अनुपालन नहीं करते, न केंद्र सरकार करती है, न राज्य सरकार करती है, न न्याय व्यवस्था करती है, न शिक्षा व्यवस्था में भी उसका अनुपालन होता है। तो भाषा प्रौद्योगिकी की संभावनाएं इस एक छोटी कसौटी पर आप देखा करेंगे कि कितनी गुना बढ़ जाएगी। यानी हरेक हमारा पत्र हिंदी में निकलेगा तो हिंदी के क्रियाकलापों के कितने सॉफ्टवेयर हमारे पास तैयार हमें करने होंगे, इसकी आप एक छोटी सी कल्पना करो तो पता चलेगा कि हमारी संभावनाओं का आकाश एक राजभाषा को लेकर कितना बड़ा है। फिर दूसरा एक क्षेत्र है कि जिसमें इस पर हमें बहुत काम करना है। असल में मैं तो ये मानता हूं कि भाषा प्रौद्योगिकी का वर्तमान में सबसे व्यापक क्षेत्र कोई है तो वह सूचना संपर्क का। सूचना संपर्क में मनुष्य, मैं देखता हूं अक्सर कि आज आदमी अपने से नहीं बोलता, वो मोबाइल से ज्यादा बोलता है। मोबाइल उसकी आत्मा बन गई है। दो आदमी एक दूसरे के पास बैठे रहते एक दूसरे से नहीं बोलते, अपनी मोबाइल के जहन में उतराकर कुरेत कुरेत कर वह संवाद पढ़ते रहते हैं। सूचना क्रांति ने मनुष्य को प्रौद्योगिकी का गुलाम बनाया है, ऐसी मेरी धारणा है। तो ये वर्तमान मनुष्य का प्रौद्योगिकी का आदि होना हमारी वर्तमान संपर्क व्यवस्था की संभावनाओं का एक विशाल आकाश है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल नेटवर्किंग को यदि हम पकड़ लेंगे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, ट्विटर है और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, इनमें भी हम हिंदी का प्रयोग करने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर मोबाइल में असल में हिंदी का सॉफ्टवेयर बना रहता है। मैं अकेला पागल ऐसा हूं कि जो मोबाइल में हिंदी प्रयोग करता है या मराठी भाषी प्रयोग करता है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग, छोटी छोटी प्रयोग की प्रतिबद्धता हमें आने वाले दिनों में इस भाषाई प्रौद्योगिकता को बढ़ाकर रखेगी। मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि भारत में जनसंचार माध्यम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो आने वाले दिनों में बदल सकता है। मुझे एक बात आपको समझानी है कि हम भारतीय लोग वर्तमान में ज्यादा राजकीय बनते जा रहे हैं। ये मुझे मालूम है कि एक अंग्रेजी बात है कि एवरी मैन इज पॉलिटिकल, पर भारतीय समाज जिस ढंग से राजकीय हो रहा है इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में ऐसा माना गया है कि औसत भारतीय नागरिक 3 अखबार पढ़ता है, खरीदता भी है और पढ़ता भी है। अब एक नागरिक एक ही भाषा के 3 अखबार यदि वह पढ़ता है, बुरा नहीं है इसमें, लेकिन मैं एक अलग बात आपको समझाना चाहता हूं कि अखबार अखबार में शब्दों का फर्क छोड़ दो तो वार्ताओं का और समाचारों का फर्क नहीं होता, चित्रों का फर्क जरूर होता है दोस्तों, चरित्रों का फर्क नहीं होता। क्या ये जरूरी है कि हम 3-3, 5-5 अखबार पढ़ने में अपना समय नागा करें? दुनिया में लोग अखबार शायद पढ़ते हैं, हिंदी में शायद माने न पढ़ना। मैंने यात्रा में विदेशों में देखा है कि अखबार 200 पृष्ठों का होता है, हमारे यहां 16-20 पृष्ठों का होता है। वह अखबार तब खरीदते हैं जब उनके पास फुर्सत होती है। ये हमारा चरित्र क्या समझाता है कि हमारे पास खाली समय है, लेकिन खाली समय को हम सार्थक नहीं बनाना चाहते। हम जितना समय राजकीय चर्चा में गुजारते हैं उतना समय हम अपने चरित्र संवर्धन, हमारे कौशल्य विकास के लिए नहीं करते हैं। इस स्थिति से यदि हम उबर पाते हैं भविष्य में, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक चरित्र में जब परिवर्तन हम कर पाएंगे भविष्य में, तो हो सकता है कि हमारी ये सूचना संपर्क क्रांति रचनात्मक ढंग से भविष्य में काम करेगी। मेरी मोबाइल में हर दिन मैंने देखा है कि फेसबुक पर करीबन 20-25 रिक्वेस्ट आती है फ्रेंडशिप के लिए। मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे हर दिन 50-50 मैसेज मिलते हैं, चैट करने वाले 20-25 लोग तो मिल ही जाते हैं। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं इन सब से संपर्क करता रहूं, लेकिन मैं देखता हूं कि हरेक लिंक को और हरेक स्ट्रोक को देखने वाले लोग मैं देखता हूं। तो ये हमारी जो एक खालीपन की मराठी में जो कहावत है, रिकामग घर भूताच घर, ये क्यों हो गया हमारा वर्तमान भारत में? तो हमारे पास कम मेहनत में ज्यादा पैसे उमेटने का एक तंत्र हमने हासिल किया है। हम अपना विकास विशेषकर अध्यापक वर्ग में मैं देखता हूं, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मैं देखता हूं कि एक क्वालिफिकेशन लेकर आदमी लग जाता है तो दोबारा उसका विकास नहीं होता। ये सिर्फ फॉर्मल क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, वह तरह तरह के कौशल्य की बात है। सूचना संपर्क क्रांति में दुनिया में एक शिक्षा की व्यवस्था मानी गई है, 2 शब्द चलते हैं, एक है दूर शिक्षण और दूसरा है निरंतर शिक्षण। ये दूर शिक्षण आप इस विश्वविद्यालय जैसे माध्यम से कर सकेंगे, लेकिन निरंतर शिक्षण कंटिन्यूअस एजुकेशन नाम की जो प्रक्रिया दुनिया में आजकल बड़ी प्रभावी मानी जाती है स्वयं शिक्षा की, उसमें आप देखा करेंगे कि आदमी का पढ़ना लिखना लगभग बंद सा होता जाता है। और ये बंद सा होने के कारण आपको ऐसा दिखाई देगा कि सूचना और संपर्क की ढेर सारी संभावनाएं होने के बावजूद भी हमारी उतनी तरक्की उस दिशा में नहीं हो रही है, क्योंकि हम पारंपरिकता में अटके हुए हैं। इसको यदि हमें सकारात्मक ढंग से रचनात्मक ढंग से करना है तो शिक्षा व्यवस्था में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रशासन में प्रयोग कर सकते हैं, फिर उद्योग में प्रयोग कर सकते हैं। मेरी अपनी मान्यता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का जितना प्रयोग आजकल की तारीख में ई कॉमर्स में जितना होता है, उतना शिक्षा में नहीं। इस दिशा में भी हमें भविष्य में सोचना है। टेलीफोन जैसा साधन है कि फीचर, वार्ता, रिपोर्टाज, टेलीफिल्म आदि के जरिए हम क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन हमने बहुत कम इस संदर्भ में किया है, ये मुझे आपको समझाना है। शिक्षा को लेकर तो अभी मैंने आपके साथ बात की, शिक्षा में भी दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा का एक नया खाता खुल गया है दोस्तों। लार्ज स्केल पर, उसको मास शब्द का प्रयोग करते हैं, कि दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा के इतने पाठ्यक्रम आजकल खुल गए हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज का ये जमाना है। इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जमाने में बड़े पैमाने पर सारी दुनिया को अपनी दाखिले में लेने वाली छोटी छोटी विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्चुअल यूनिवर्सिटीज की हो रही है, और उन्होंने शिक्षा का एक नया कार्यक्रम प्रभावी रूप से अमल में लाना शुरू कर दिया है। उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन टू वन शिक्षा, ईच वन टीच वन वाली एक नई व्यवस्था ऑनलाइन पर आ रही है। इसके क्षेत्र में भविष्य में हमें काम करना होगा। फिर हमारे भाषाई एप्स और कोश और सॉफ्टवेयर हमने अभी तक विकसित नहीं किए हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के एप्स अप्लाइड नहीं है, एकेडमिक ज्यादा है, इस क्षेत्र में भी हमें काम करना है। अनुसंधान का क्षेत्र लगभग कोरा ही है दोस्तों, ब्लैंक पेपर है हमारा। अनुसंधान के क्षेत्र में लगने वाले सॉफ्टवेयर जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संपर्क क्रांति में आ गए, उतने शिक्षा में नहीं है। मैं एक छोटी बात आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास जैसा विषय है, इतिहास विषय में इस क्षेत्र में लगभग न के बराबर काम है जो भविष्य में होने की संभावना है। विशेषकर सोशल साइंस एक ऐसा क्षेत्र छूट गया है, फिर भी किसी तरह भाषा में हमने बहुत काम करना शुरू कर दिया है, वह हमारी रोजाना जरूरी भी है। लेकिन दुनिया में मैं देखता हूं कि एक तो बेसिक साइंस मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में और सोशल साइंस के क्षेत्र में लोग भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र जैसे संसाधनों पर बहुत काम करते। एक उदाहरण मेरे दिमाग में इस संदर्भ में आता है कि हम नासिक से आपके साथ संवाद कर रहे हैं, तो यहाँ ये जिला है, आदिवासी बहुल जिला है। तो इस आदिवासी बहुल जिले में मुझे याद आता है फ्रांस का एक उदाहरण कि वहां भी ऐसी छोटी छोटी जो जनजातियां हैं उनके लिए वे भाषाई प्रौद्योगिकी पर जितना काम करते हैं, जितना सूक्ष्मता से काम करते हैं, उतना आज हम नहीं कर रहे। मुझे एक और उदाहरण याद आता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारी एक बड़ी समाज वैज्ञानिक थी इरावती कर्वे। मैं जब छात्र था तो गारगोटी जैसे कोल्हापुर जिले में दूर दराज गांव में वह गडरियों का माने धनगरों का अध्ययन करने के लिए आई थी, और उनका विषय क्या था कि वह जो गडरियों की जमात है, समुदाय है, उनका समाज वैज्ञानिक अध्ययन करना था। उस समय मैंने देखा है कि वह गडरियों के सिर का नाप ले रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिर का नाप क्यों ले रही है। तो उन्होंने बाद में 40 साल के पूर्व मुझे ऐसा बताया था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका दिमाग छोटा होता है, अनपढ़ लोग होते हैं उनका दिमाग पुख्ता होता है। अब ये दिमाग का पुख्ता होना वो बता रहे थे कि मानव वंश का सबसे बलशाली पक्ष यदि कोई है तो वह मनुष्य का भेजा है। और वो बता रही थी उन दिनों, ये 1970 के लगभग की बात मैं आपको समझा रहा हूं, कि उन्होंने उस समय मुझे ऐसा बताया था चर्चा में कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके दिलो दिमाग में जितनी सुर्खियां हैं उतनी सुर्खियां पढ़े लिखे लोगों में दिखाई नहीं देती। माने उन्होंने ये बताया था कि प्राकृतिक बुद्धिमता जितनी आदिवासी समुदाय में होती है उतनी पढ़े लिखे लोगों में नहीं होती है, और उसका कारण उन्होंने बताया था कि ये आदिम जनजाति के जो लोग हैं वह मूलभूत जीवन पद्धति से जुड़े होने के कारण, मूलभूत संघर्षों से जुड़े होने के कारण वह जितना संघर्ष जीने के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए करते हैं, बचने के लिए करते, जिजीविषा के लिए करते, उतना संघर्ष शिक्षित मनुष्य नहीं करता है। और फिर उन्होंने एक अंतिम वाक्य जो बताया था वो मुझे भाषा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ज्यादा अहम लगता है। उन्होंने बताया था कि हमारी पढ़ाई लिखाई जब तक हमारे जीवन और अस्तित्व से जुड़ नहीं जाती, हमारी पढ़ाई लिखाई दोस्तों पैसे कमाने का जरिया बन गई है, उसका और जीने का कोई संबंध नहीं होता है। अभी कुछ समय के पहले डॉक्टर राजदेरकर जी मुझे बता रहे थे कि रात को सोए थे और 3 बजे उठ गए आधी रात में, सिंगापुर में थे वो, और उन्होंने रात को 3 बजे देखा कि इतनी कम यातायात के होते हुए भी लोग ट्रैफिक के सारे कानूनों का पालन कर रहे थे। ये जो स्थिति है हमारी, वह स्थिति शिक्षा का जीवन से संबंध उन्होंने रखा, इसलिए वहां स्थिति ऐसी पैदा हो गई। हमारे यहां जेब्रा क्रॉस करने वाले माने चौराहे पर जहां पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए जगह होती है, वहां खड़े रहने वाले दुपहिया धारक, चार पहिया धारक अनपढ़ नहीं होते, वे पढ़े लिखे होते हैं, और वो जेब्रा क्रॉस में आकर ऐसे बेमुरवत खड़े रहते हैं कि ये बताते हैं कि हमने भले शिक्षा पाई हो, हमने जीना नहीं सीखा है। तो ये जो हमारी शोकांतिका है दोस्तों, इस शोकांतिका से हमें भविष्य में उबरना है, तब जाकर हमारी जो डॉक्टर राजदेरकर बता रहे थे कि हमारी शिक्षा दीक्षा प्रौद्योगिकी इन सबका संबंध सार्थकता तब है जब जीवन से हम उसको जोड़ नहीं पाते और जोड़ सकते हैं। एक छोटी बात और मैं आपको समझाना चाहूंगा, वह है साहित्य। साहित्य कैसे निर्माण होता है, वो पहले मुर्गी या पहले अंडा वाली जो कथा चलती है हमारे यहां, वैसे साहित्य और जीवन को लेकर भी है कि पहले जीवन था या पहले साहित्य था। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जीवन था और फिर साहित्य निर्माण हो गया। यदि पहले जीवन है तो मैं आपको बताऊंगा कि साहित्य का हमारे जीवन से जुड़ा रहना जरूरी है। वर्तमान युग में कल्पनात्मक साहित्य दोस्तों हम कम लिख रहे हैं, जहां तक मराठी की बात है। पिछले हफ्ते मैं एक कंपनी के पुस्तक प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए गया था, मैंने क्या देखा वहां कि हाउ डू लिटरेचर मराठी में, जीवनोपयोगी साहित्य मराठी में बड़े पैमाने पर छप रहा है और लोग भी पढ़ रहे हैं। जिस समाज और भाषा समुदाय के लोग कल्पनात्मक साहित्य पढ़ना छोड़ देते हैं, उनके दिलो दिमाग में कल्पना और सपनों का होना लाजमी नहीं होता। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की सारी विकसित भाषाएं उन्होंने ललित साहित्य से कभी राह नहीं मोड़ी है जैसे हम मोड़ रहे हैं। यह मैं आगाह करता हूं दोस्तों कि हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, हमारा वह साहित्य जिसको लोग पुराना कहते हैं या 20वीं शताब्दी का कहते हैं, गुजरी शताब्दी का कहते हैं, मैं 2-4 चीजों को आपको बताना चाहूंगा कि मराठी में जैसे ययाति नाम का उपन्यास है, हिंदी में शतरंज के खिलाड़ी जैसी कथा है, पाकिस्तान के विभाजन, भारत विभाजन पर आधारित तमस जैसा उपन्यास है, उमराव जान आदा जैसी फिल्म है। ये सारी कलाकृतियों को आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये सारा साहित्य हमें जीवन सिखाता है। ये प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी नाम की कथा में दिखाया क्या है कि दो सरदार शतरंज खेल रहे हैं, बुद्धिबल खेल रहे हैं, अपनी उस बिसात पर बैठे राजा के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन उनके सामने उनका सच्चा राजा अंग्रेज पकड़ ले जा रहे हैं, उसकी कोई फिक्र भी इन दोनों को नहीं होती। ऐसा एक दृश्य शतरंज के खिलाड़ी में सत्यजीत राय और प्रेमचंद ने दिखाया, वो बहुत प्रभावी दृश्य है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम वर्तमान में ऐसी ख्याली दुनिया में तो नहीं रह रहे कि जिससे हकीकत दूर जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हकीकत से दूर दुनिया जो होती है वह हमें किस काम का नहीं रखती है। इसलिए दोस्तों, आप भाषा और लिपि के अध्येता है, मैं इस बहाने आपको सलाह देना चाहूंगा कि हमारी भाषा प्रौद्योगिकी आने वाले दिनों में लिखित नहीं रहेगी, वह तो देखने की चीज रहेगी, वह पढ़ने की चीज रहेगी। आज हम ऐसा मानते हैं, मेरे जैसा भाषा और लिपि पर सोचने वाला आदमी, जब लोग कहते हैं कि वाचन संस्कृति खत्म होती जा रही है, मैं इससे दोस्तों बिल्कुल असहमत हूं। मेरी ऐसी मान्यता है कि पहले हम सिर्फ पढ़ते थे, आज लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। वर्तमान युग में देखना भी एक तरह से पढ़ना है। लोग शिकायत करते हैं कि लोग निठल्ले बैठकर टीवी देखते हैं, वो टीवी देखते नहीं, वो टीवी पढ़ते हैं। तो ये देखना भी पढ़ना नाम का जो एक नया शिक्षा व्यवहार है, इसको भी हमें अमल में लाना है, क्योंकि वो भाषा प्रौद्योगिकी का दृक्षाव्यंग है। पहले हम सिर्फ पढ़ते थे, अब देखते हैं, सुनते हैं, निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमारा पहला जो पठन पाठन था वो सीमित था, अब उसके कितने दायरे हमने विकसित किए हैं, जितने शिक्षा दीक्षा के दायरे हमारे विकसित होंगे उतना ही साहित्य का दायरा भी चौड़ा होता जाएगा। और जैसा साहित्य का दायरा दोस्तों चौड़ा होता जाएगा, हमारे भाषा प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का विस्तार भी उतना ही होगा। अंतिम बात है दोस्तों वाणिज्य की। ई कॉमर्स शब्द हम बार बार सुनते हैं, मैं तो यह ऐसा मानता हूं कि हमने जितनी तरक्की भाषा प्रौद्योगिकी की, व्यापार, बीमा, बैंक, उद्योग, पर्यावरण, पर्यटन आदि में की है, उतनी शिक्षा दीक्षा भाषा साहित्य व्यवहार में नहीं की। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक भाषा प्रौद्योगिकी का विस्तार हमने मार्केटिंग कॉमर्स इंडस्ट्री में किया है, वैसा ही सलूक, वैसा ही व्यवहार, वैसी सतर्कता यदि हम आने वाले दिनों में भाषा के व्यवहार को लेकर देखने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि हमारी भाषा प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का आकाश, जैसे कि आरंभ में मैंने कहा कि अपरिमित होगा, स्काई इज द लिमिट वाली जो बात है वह हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी के साथ भी है। जीवन के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है कि जिन्होंने हमने प्राथमिक तौर पर काम नहीं किया है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, विधि का क्षेत्र है, न्याय का क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र है कि जहां आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम हमें करना है। ये ऐसी संभावनाओं के क्षेत्र है जो अस्पर्शित रही है, भविष्य में जाकर यदि हम करते हैं तो हमारी हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी का भविष्य उज्जवल होगा। आपने ये विषय हिंदी के अध्ययन के हेतु चयनित किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इन सारे व्याख्यानों के जरिए आप भविष्य में संगणक साक्षर बनेंगे, हिंदी के ऐसे सजग प्रयोगकर्ता होंगे कि जिससे कल का भाषा प्रौद्योगिकी का विश्व है वो फूलेगा फलेगा। धन्यवाद।